हरे कृष्ण। तो 64 भक्ति के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग नाम संकीर्तन, और उसके बारे में हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है 64 भक्ति के अंगों में, जैसा कि श्रील भक्तिनोद ठाकुर ने भी जैव धर्म में लिखा है कि जब नाम संकीर्तन हम करते हैं तो भक्ति के सारे अंग वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब भी कोई नाम संकीर्तन में भाग लेता है तो बाकी जितने भी अंग हैं भक्ति के, 63 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस वहाँ मौजूद होते हैं नाम संकीर्तन के साथ। और दूसरा ये भी बताया गया है श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा कि कोई भी अंग अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाता जब तक साथ में संकीर्तन ना हो। ऐसे मान लीजिए विग्रह की सेवा कर रहे हैं आप, तो साथ में संकीर्तन आवश्यक है, भगवान के नामों का कीर्तन आवश्यक है। कथा कर रहे हैं तो नाम संकीर्तन आवश्यक है। स्वाध्याय कर रहे हैं तो सबसे पहले कीर्तन आवश्यक है। तो नाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, और ये युग धर्म भी है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में नाम रूप में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। नाम होते हुए सर्व जगत निस्तार, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला ये कि जब हम नामों का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त होता है, और जो इन नामों का उच्चारण करता है निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो ये जो नाम है, जिस नाम की यहाँ पर बात की गई है, जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, जिस नामों का उच्चारण हमें वास्तव में करना चाहिए, वो है शुद्ध नाम, वो है अप्राकृत नाम, वो इस जगत का नाम नहीं है। जैसे कि वेदांत सूत्र में एक सूत्र है अनावृति शब्दात्, अनावृति शब्दात का मतलब है कि अगर आप उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो दोबारा आपके ऊपर भौतिक आवरण नहीं होगा। अनावृति शब्दात, शब्दों का उच्चारण करने से, आध्यात्मिक शब्दों का उच्चारण करने से, ये भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, ये शब्द के द्वारा ही प्रारंभ हुआ है। भौतिक जगत की सृष्टि भी शब्द से ही हुई। ब्रह्मा जी ने भी शब्द सुने, अक्षर सुने, और अक्षरों को सुनकर ता और पा, जैसे अक्षर सुने उन्होंने तो इस तरह से उन्होंने तपस्या प्रारंभ की, उनको भी बीज मंत्र प्राप्त हुआ, शब्द प्राप्त हुए। किन से प्राप्त हुए? भगवान से, वेणु वादन के द्वारा, भगवती सरस्वती के द्वारा उनको मंत्र प्राप्त हुए। इस तरह से वो भी दीक्षित हुए, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ। अनावृति शब्दात, भौतिक जगत का शब्द जो है आपको भौतिक संसार में बांधता है, आध्यात्मिक जगत का जब शब्द उच्चारण करते हैं तो भौतिक जगत से वो छुटकारा दिलाता है। अनावृति शब्दात का अर्थ यह है कि भौतिक जगत से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आप आध्यात्मिक जगत के शब्दों का उच्चारण करें, यानी कि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत में नाम संकीर्तन की काफी महिमा दी गई है, और जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद का, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का वर्णन किया गया है, भविष्यवाणी की गई है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेदशा। कृष्ण वर्णम, वर्ण का मतलब होता है क्लास, वर्ण का मतलब होता है बार बार, जो इन शब्दों का जो उच्चारण करता है, बार बार किसी चीज का उच्चारण करना, उसको भी वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब क्लास भी होता है। कृष्ण वर्ण का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे, श्रील प्रभुपाद बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे जब भी वो प्रचार करते थे या ग्रंथों की रचना करते थे। उनके ग्रंथ जो है कृष्ण के नामों से भरे हुए हैं, जैसे शिला प्रभुपाद भी कृष्ण वर्ण में है। श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे थे और जहां भी जाते थे वो हरि नाम लेते थे, इसलिए वो कृष्ण वर्ण में। तुषा कृष्णम, तुषा अकृष्णम का मतलब है कि उनका रंग जो है वो काला नहीं है, वो गोरांग रंग के है। और तुषा कृष्णम का मतलब क्या है कि अंदर से वो कृष्ण है, अंतः कृष्ण बहिर्गौर, अंतः कृष्ण बहिर्गौर, बाहर से गौर है और अंदर से कृष्ण है, इसलिए कृष्णा कृष्ण कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तुषा कृष्णम। विच्छेद जब किया जाता है तो दो तरीके से इसका विच्छेद किया जाता है, एक तो तुषा कृष्ण जब बोलते हैं तो उसका अर्थ है कि भीतर से वो काले हैं, कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, बाहर से गौर रूप में प्रकट हुए हैं। और दूसरा अर्थ क्या है, तुषा तुष अकृष्णम, अकृष्ण का मतलब है कि वो काले नहीं है, गौरांग रंग के हैं। तो दोनों ही अर्थ शब्द से निकलते हैं, कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम और सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, उनके साथ उनके पार्षद हैं, उनके पार्षद हैं अद्वैताचार्य हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, ये सब पार्षद हैं, और शिवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये सब क्या उपंग हैं उनके। इस तरह से संग भी है और उपंग भी है, और उनका अस्त्र भी है, अस्त्र स्वयं वो अस्त्र है, उनका सौंदर्य उनका अस्त्र है, और जो हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं वो उनका अस्त्र है, सुदर्शन चक्र उनका अस्त्र नहीं है, वो अपने सौंदर्य से, अपने लावण्य से और नामोच्चारण के द्वारा वो सबको आकर्षित करते हैं, सभी के पापों को नष्ट करते हैं और सभी को कृष्ण प्रेम देने वाले। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश्वर नमः। तो ये वास्तव में उद्देश्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा। जो उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण करने आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, वो आए हैं नाम संकीर्तन के माध्यम से देने के लिए। नाम संकीर्तन कोई साधारण नाम का वितरण करने नहीं आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, ये नाम संकीर्तन का वितरण करने आए हैं। ये गोलोक का नाम है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, वैकुंठ नाम का वितरण नहीं किया उन्होंने, गोलोक का नाम दिया है। और इस हरे कृष्ण महामंत्र में तो पांचों रस पाए जाते हैं, इस कारण से भी ये महामंत्र है। श्री भक्तों ठाकुर ने कृष्ण संहिता में दिया है, जो उन्होंने 1885 में प्रकाशित किया था, और उसमें लिखा कि सतयुग में जो महामंत्र था, सतयुग का जो महामंत्र था उसमें कोई शांत रस की उपलब्धि प्राप्त कर सकता था, शांत रस तक पहुंच सकता था, शांत रस की प्राप्ति करके वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकता था। और उसके बाद त्रेता युग में जो महामंत्र था उसके द्वारा वो दास्य रस की प्राप्ति कर सकता था और शांत रस भी, और द्वापर युग में वात्सल्य रस तक, जिसमें सख्य रस, दास्य रस और शांत रस भी शामिल है। लेकिन कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र है यह हमें उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करता है, जिसमें सारे रस पहले से ही शामिल है, और इसका वितरण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं।
Yes. द्वापर युग वाज इन द गोपीज, सो वी अंडरस्टैंड दैट दे हैड इन लव, इट हैड नथिंग टू डू विद
द मंत्र। नो, बट द्वापर युग ही वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, ही कुडंट डिस्ट्रीब्यूट, द्वापर युग ही वाज ट्राइंग टू रिलीज माधुरी रस, ही वाज ट्राइंग टू रिलीज माधुरी रस बट कुडंट रिलीज फुली, सो देयरफॉर दैट डिजायर रिमेन अनफुलफिल्ड, सो टू फुलफिल दैट डिजायर ही केम एज श्री चैतन्य महाप्रभु। So those details are also given, that we are not discussing here now. तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो वितरण करते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा। तो नाम संकीर्तन में जो भाग लेता है तो वो किस में भाग ले रहा है, वो रासलीला में भाग ले रहा है। श्रील प्रभुपाद को किसी ने एक बार लिखा कि प्रभुपाद इज इट दैट नाम संकीर्तन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम रासलीला, प्रभुपाद ने कहा यस नाउ यू हैव अंडरस्टूड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नाम संकीर्तन। सो नाम संकीर्तन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रासलीला, So first you have to enter the Ras Lila, then you will get the opportunity to do Nikunj Seva. सबसे पहले आप Ras Lila में भाग लेंगे तभी आप Nikunj Seva की प्राप्ति कर पाएंगे. तो ये है आपका महामंत्र का जप जो आप स्वयं जप करते हैं. That is like Nikunj Seva. And participating in Naam Sankirtan is like participating in Ras Lila. So, जो इसलिए जो श्रीवास आंगन है, श्रीवास आंगन योगपीठ के पास, उसको रासस्थली भी कहा गया है, जहां पे श्रीमन महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ, निजी पार्षदों के साथ संकीर्तन लीला करते हैं, संकीर्तन लीला करते हैं. और संकीर्तन लीला खासकर जो रात्रि में होता है संकीर्तन, हाँ, उसी समय रास लीला का भी समय होता है. तो ये जो श्रीवास आंगन है ये बहुत ही गुह्यतम स्थान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल प्लेस है श्रीवास आंगन. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रेम आश्रय है, जिस तरह से बता रहे थे उसे महारानी महाराज. नित्यानंद प्रभु जो है वो कौन है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु रस आश्रय है और नित्यानंद प्रभु है प्रेम आश्रय है, गदाधर पंडित भाव आश्रय है और श्रीवास पंडित क्या है, शुद्ध नाम के आश्रय है. और कौन बच गया, अद्वैताचार्य, वो पांच रात्र की विधि के आश्रय है, पांच रात्र की विधि, पांच रात्र के आश्रय है, लेकिन उनका आश्रय लेकर ही आप भागवत विधि की ओर बढ़ सकते हैं. जब तक आपको अद्वैताचार्य की कृपा नहीं होगी आप पांच रात्र की विधि से भागवत विधि की ओर नहीं जा पाएंगे, वैदिक भक्ति से राग मार्ग की तरफ नहीं जा सकते. तो इसलिए दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा भले पाए चैतन्य निताय. ये कर्म अनुसार इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने भी भजन लिखा है. ये जब आचार्य लोग भजन लिखते हैं तो भावुकता के कारण नहीं लिखते हैं, उसके पीछे बहुत ही अनमोल गुह्यतम गहरा सिद्धांत होता है. तो पंच तत्व का आश्रय लेकर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और उससे पहले हम लोग षड गोस्वामियों की कृपा लेते हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचई गोसाई कोरी चरण बंदन, जाओ होते विघ्नानाश अभिष्ट पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राय प्राय संकीर्तन यज्ञ करते हैं और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम लोग ऐसे भगवान की पूजा भी करते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु की भी सेवा हम लोग संकीर्तन के माध्यम से करते हैं, संकीर्तन लीला के द्वारा सेवा होती है श्रीमन महाप्रभु की. यजंती ही सुमेधशाह, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है कलयुग में, वो ऐसे भगवान की सेवा पूजा करते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा. श्रील जी गोस्वामी कहते हैं कलयुग में तो भगवान कृष्ण की पूजा लोग नाना प्रकार से करेंगे लेकिन वो सब बुद्धिमान नहीं है, सब बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान वो है जो नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं. अब प्रश्न उठ सकता है कि सतयुग में तो हरे कृष्ण महामंत्र था तो सतयुग में फिर क्यों हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को नहीं समझ पाए. हमने तो सुना है उसमें तो सतयुग में अधिकांश लोग जो है वो परमहंस हुआ करते थे, या तो कम से कम लोग सत्वगुण में होते थे कम से कम, ना तो वो लोग क्यों हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा नहीं समझ पाए, हमें ऐसी क्या विशेषता है. कलयुग के पतित जीव जो चार नियमों का पालन करने में संघर्ष कर रहे हैं, मनस्ष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थाने कर्षति, हमें ऐसा कौन सा, हमारे अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है, क्या ऐसा हिडन ट्रेशर है हमारे अंदर, हमारे अंदर क्या योग्यता है. तो श्रील जी गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं सतयुग में जो लोग थे वो इतने ज्यादा भाग्यशाली नहीं थे. तो क्यों, वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं थी. श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए हैं और तो और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण नहीं किया स्वयं. उस समय हरे कृष्ण महामंत्र था लेकिन महाप्रभु ने वितरण नहीं किया। लेकिन कलयुग में स्वयं भगवान यानी कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण कर रहे हैं, यह है सबसे बड़ी बात। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं, इस कारण से हम भाग्यशाली हैं, है ना। अयुत की कृपा, अकारण कृपा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। वो ना स्थान देखते हैं, ना देश काल पात्र देखते हैं, वो तो सबको प्रेम प्रदान करते हैं, है ना? नाम संकीर्तन के द्वारा। जो नाम संकीर्तन के में गोता खाएगा, नाम संकीर्तन में भाग लेगा, निश्चित रूप से उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। और श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, शायद पद्यावली से लिया है और चैतन्य चरितामृत में भी इसका उदाहरण दिया गया है। और बता रहे, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। इस बहुत सुंदर ये श्लोक है, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णा बुधेभ्यास प्रिहान चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियानाम कृतिम नो जाने जनिता कियत भीर अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। बोलते मैं नहीं जानता हूं कि इन दो अक्षरों में कितना अमृत भरा हुआ है, कृष्ण और नाम, कितना इसमें अमृत है, कितना इसमें रस है, मैं नहीं जानता। जब भी मैं इन कृष्ण के नामों का उच्चारण करता हूं, ऐसा लगता है कि मेरी जीवा में ये नृत्य कर रहे हैं। तांडवनी, तुंडे तांडवनी, है ना। महादेव भी तांडव नृत्य करते हैं, है ना, लेकिन उस समय सब डरते हैं, घबराहट होती है। और कृष्ण तो स्वयं नटवर हैं, वो जब नृत्य करते हैं तो सबको आनंद मिलता है। महादेव जब नृत्य करते हैं तो प्रलय आ जाता है, नरसिंह भगवान जब नृत्य करेंगे तो क्या होता है, हिरण्यकश्यप को लेके जब नृत्य करते हैं, भगवान राम तो नृत्य करते नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो हमारे जो है श्री कृष्ण ही है वो नटवर वपु है, उनका नाम ही है नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम, जैसे गोपियां बोल रही श्रीमद भागवत में, है ना। नटवर वपु, उनका वपु ही नटवर है, या उनका नाम भी ऐसे ही होगा, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जब वो नाम प्रकट होता है, तुंडे तांडवनी, वह तांडवनी मतलब उसमें नृत्य करता है, है ना, उस जीवा में, उस मुख के भीतर नृत्य करता है नाम, तो क्या होता है, भक्त भी नृत्य करता है। इसलिए तो हम सब नृत्य करते हैं, संकीर्तन में क्यों नृत्य करते हैं। तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये, बड़ा सुंदर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से हो रहा है कि बहुत सारे जीवा की मैं लालसा करता हूं, इच्छा करता हूं, लाखों जीवाएं हों, और जब ये नाम मेरे कर्ण के द्वारा प्रवेश करता है, कर्ण के छिद्रों के द्वारा प्रवेश करता है, तो मैं लाखों कर्णों की आशा करता हूं। कर्ण मतलब कान, कर्णों की आशा करता हूं। और मेरे हृदय के आंगन में जब ये नाम नृत्य करता है, हृदय आंगन में नाम ये नृत्य करता है, नाम यानी कि नाम ही नृत्य कर रहे हैं, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो नाम जब नृत्य करेंगे तो क्या होगा फिर उस समय जब सारे मन के जो कार्यकलाप हैं उनके ऊपर विजय पा लेता है ये नाम, और सारी जो इंद्रियां स्तब्ध हो जाती है, इनर्ट हो जाती है एकदम से। तो ये नाम की महिमा बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, है ना। हमारे लिए तो दो कान ही भारी पड़ते हैं और एक जो जीवा है वही भारी पड़ती है, है ना। तो क्योंकि हमारे अंदर भी क्या है, अकाल है, बंजर जमीन उपजाऊ नहीं है, है ना, अपराधों का जंजाल है, हमारे चेतना जो है वो जंगली पौनों से भरी हुई है, इसलिए उन सबको पहले उखाड़ना होगा, तभी हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जो शुद्ध नाम है वो प्रवेश करेगा। शुद्ध नाम प्रकट होता है, शुद्ध राम प्रकट होता है। केवल अक्षरों का उच्चारण करने से शुद्ध नाम नहीं निकलता, शुद्ध नाम प्रकट होता है। लादिनी शक्ति की जब कृपा होती है, विशुद्ध सत्व जब प्रवेश करता है हृदय में, तब जो है शुद्ध नाम हमारी वाणी से निकलता है। यानी कि कृपा जब होती है, जब कृपा होती है वो नाम जो है अवतरित होगा, हमारी वाणी में प्रकट हो जाएगा और आपकी जीवा जो है वो रुक नहीं सकती। तब तुंडे तांडवनी का अर्थ एक और ये है, एक तो स्वयं नाम ही नृत्य कर रहे हैं और दूसरा आपकी जो जीवा है वो भी नृत्य करेगी। इसके दो अर्थ, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जीवा कभी रुकती नहीं थी, वो ऐसे हिलती रहती थी, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आपकी जीवा होगी तो कैसा लगेगा आपको, जब वो नाम में रुचि आ जाएगी तो ऐसा लगेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब एक बार शौच के लिए गए तो वहां पर गोपाल खड़े थे, उन्होंने कहा कि शौच का समय तो ठीक है लेकिन आपने अपनी जीवा को दांतों के बीच में क्यों दबाया हुआ है महाप्रभु, यह हरि नाम, ये जो नियम है ये हरि नाम के लिए नहीं है, यहां हरि नाम तो आप ले सकते हैं, आपने हरि नाम लेना क्यों बंद कर दिया। तो महाप्रभु कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा, तुम तो मेरे गुरु हो। तो महाप्रभु उनको नाम दिया कि तुम्हारा नाम गोपाल नहीं है, तुम्हारा नाम गोपाल गुरु गोस्वामी आज। तो महाप्रभु उनको अपना गुरु स्वीकार किया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब नामी जब प्रकट हो जाता है तो उस समय आपके जो जीवा है वो भी नृत्य करती है ना, क्योंकि इन जड़ इंद्रियों से, इस भौतिक शरीर से आप इस अपराकृत नाम को नहीं ले सकते, ये नाम अपराकृत है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रायम इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यदा। तो ये भौतिक इंद्रिया जो है इन नामों को उच्चारण कर ही नहीं सकती है, शुद्ध नाम निकल ही नहीं सकता है भौतिक इंद्रियों के द्वारा। लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसे होगा, फिर सेवा की भावना से, सर्विस स्पिरिट, या सर्विस स्पिरिट के सेवा की भावना से हम नाम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि नाम ही साधन है, ये नाम ही साध्य है। तो फिर क्या होगा, नामी की कृपा होगी और विशुद्ध सत्व प्रवेश करेगा और लादिनी शक्ति की कृपा से शुद्ध नाम का हम लोग उच्चारण कर पाएंगे। शुद्ध नाम आकर हमारी जीवा पर आकर बैठेगा, हमारे हृदय आंगन में बैठेगा, शुद्ध नाम निकलेगा, फिर आप नृत्य के बगैर रह ही नहीं सकते। बकरेश्वर पंडित जिस तरह से 72 घंटे नृत्य करते रहे शिवास आंगन में, शिवास पंडित जी के घर पे, और चैतन्य महाप्रभु गाते रहे, उन्होंने कहा कि मेरा एक और पंख होता तो मैं उड़ने लगता, ये बकरेश्वर तो एक पंख है और एक और पंख इस्तेमाल होता तो मैं उड़ने लगूं। फिर तो शिवास आंगन में ये लीला हुई, 72 घंटे लगातार वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे। तो वो नृत्य क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि नाभि उनके हृदय में प्रवेश कर चुका था। जब नाभि आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा तो फिर आप कैसे आप खड़े हो सकते हैं, आप नृत्य ही करेंगे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस बात को समझना। तो थोड़ा सा और जरा नाम के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संकीर्तन की बात चल रही है तो हम वो जो श्लोक बता रहे थे वहीं वापस चलते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षतम यज्ञ संकीर्तन प्राय जदंती ही सुमेध दशा। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनका वितरण करना भी संकीर्तन है। किसने एक बार बोला कि प्रभुपाद ग्रंथों के बारे में कि प्रभुपाद के ग्रंथों का जब वितरण कर रहे हैं ये संकीर्तन है और ये श्रीमती राधारणी के लिए उत्तम सेवा है, सर्वोत्तम सेवा है। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ये एग्जैगरेशन तो नहीं है जो इस भक्त ने कहा, ये बड़ा चढ़ा के तो नहीं कह रहा है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक बोला उसने, वो ठीक ठीक समझाया सिद्धांत को, क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से हम हर जीव को राधारणी की सेवा में लगा रहे हैं, ये राधारणी का कार्य कर रहे हैं। राधारणी क्या करती है, हर जीव को कृष्ण से मिलाती है और आप भी वही कार्य कर रहे हैं। तो ये राजवाणी की सेवा नहीं हुई तो क्या हुआ? और ये संकीर्तन क्यों है, हमने इसका आपको उत्तर दिया पहले से ही, कृष्ण वर्णन का जब आपको बताया, अर्थ बताया कि ये वो ग्रंथ है शिला प्रभुपाद जी के, जिन ग्रंथों में बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण शिला प्रभुपाद बार बार करते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि मैंने किताबें लिखी नहीं है, दिस बुक्स आर स्पोकन कीर्तन्स, प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं जगह पर, स्पोकन कीर्तन्स, मैंने तो कीर्तन किया है। तो कीर्तन किसका कर रहे हैं प्रभुपाद? कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। तो बार बार आप प्रभुपाद की किताबों में कृष्ण के नामों का उच्चारण होते हुए देखते हैं। प्रभुपाद के आर्टिकल को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे ज्यादा पसंद किया, उन्होंने कहा कि ये जब भी अभय लिखे, कुछ भी लिखे, उसको छापो। बोले क्यों? कि वो आर्टिकल सबसे अच्छा है जिसमें सबसे ज्यादा जो है कृष्ण का नाम आता है, और इनके आर्टिकल में सबसे ज्यादा कृष्ण का नाम आ रहा है ना। और प्रभुपाद की किताबों में आप देखते हैं कि कृष्ण का नाम जो है वो बार बार आता है, छोटी किताब हो या बड़ी किताब हो, प्रभुपाद कहीं न कहीं जो है कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं। तो ये एक रहस्यमय बात है, इसलिए पुस्तकों का वितरण करना, ग्रंथों का वितरण करना जो है ये बृहत मृदंग है, बृहत मृदंग। इस संकीर्तन की ध्वनि जो है लाखों 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 मील जाती है दूर। ऐसे संकीर्तन में ना भाग लेना आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है, इट इज इंजूरियस टू स्पिरिचुअल हेल्थ, नॉन पार्टिसिपेशन इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो बताया हमने, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, नाम संकीर्तन इज रासलीला, सो यू एंटर रासलीला ऑल्सो। सो इस तरह से जो है हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये कलयुग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन है नाम संकीर्तन की। और साथ में ये भी बताया गया है नारद पुराण में, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जपतो हरि नामानि स्थाने शत गुणादि कहा आत्मनांचा पुतात उच्चैर जपन श्रुतेन पुणाति चट, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इज 100 times मोर पावरफुल देन चैंटिंग सॉफ्टली। अ पर्सन हु चैंट्स लाउडली प्यूरिफाइज हिमसेल्फ एज वेल एज दोस हु हियर हिम चैंटिंग। तो नाम संकीर्तन जब करते हैं आप दूसरों को भी पवित्र करते हैं, खुद को भी पवित्र करते हैं, और बहुत जल्दी पवित्र हो जाते हैं। और जल्द ही आप नारदीय पुराण प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो चैतन्य भागवत में भी वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है इसी तरह से। तो इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए क्या है कि संकीर्तन जो है, संकीर्तन में भाग लेने से आध्यात्मिक उन्नति जो है बहुत जल्दी होती है। इसलिए कोई किसी भी सेवा में हो उसको चाहिए थोड़ा सा समय निकाल के वो संकीर्तन में जरूर जाए, ये बहुत ही प्यूरिफाइंग है। ऐसा नहीं कि अगर आपको एक सेवा दे दी है तो और कोई सेवा कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप समझ लीजिए छुट्टी लेके जा रहे हैं अपनी सेवा से, जैसे आप किसी को फरीदाबाद टेंपल संभालना है, अब ये नहीं कि वो पूरे 365 दिन फरीदाबाद टेंपल के अंदर ही घुसा हुआ है, नहीं, वो भी छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी लेकर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए मसुंदरपुर के साथ, वो जो उनके लिए टॉनिक का कार्य करेगा। अब कुछ ट्रेनर्स हैं, ये नहीं को ट्रेन ही करते हैं सिर्फ, है ना, सर्कस में भी लोग ट्रेन कर रहे हैं जानवरों को, लेकिन कभी कभी हमें अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए अपने आप को भी प्रशिक्षित करने के लिए हमें संकीर्तन में भाग लेना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारे गुरु महाराज का भी आदेश कि हमारे जो मैनेजर्स हैं उनको चेंज के लिए कभी कभी बुक डिश में जाना चाहिए, कहा कि नहीं? ये रसायन का कार्य करता है संकीर्तन, मोस्ट पावरफुल। लेकिन ध्यान रहे कि कई बार हम लोग बहुत ज्यादा भावुक भी ना हो जाएं इन चीजों में, देश काल पात्र के अनुसार सेवाएं आचार्यों के द्वारा दी जाती है, तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप एक ही अंक के ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं, ये हिसोले राधा गोविंद महाराज ने बड़ा अच्छा समझाया था इस बात को कि कई बार लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी फंड्स की जरूरत है, और उस समय आप एक ही अंग पर जोर दिए जा रहे हैं, प्रचार के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, तो उससे क्या होता है कि डाइवर्शन सा होता है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, हम ये मंदिर का निर्माण पूरा करें, उसके लिए जो भी आवश्यक है वो करें, लेकिन उस समय अगर आप एक ही अंग को अगर आप जोर देते रहेंगे वो ठीक नहीं होगा। शास्त्रों का निष्कर्ष ये है, इसको तो लेके चलना ही है, लेकिन साथ साथ पे देश काल पात्र और परिस्थिति को भी समझना अच्छी तरह से, और इसी के लिए हमें गुरु और साधु चाहिए मार्गदर्शन के लिए कि शास्त्रों को कैसे समझा जाए। तो उस समय हमें गलत नहीं समझ लेना चाहिए अपने गुरुजनों को, आचार्यों को, कि ये क्या है, ये तो संकीर्तन श्रेष्ठतम अंग है, हमें तो अभी मंदिर के निर्माण में लगा रहे हैं, असल रहे हैं बात को, तो ये देश काल पात्र के अनुसार भी समझना होगा, कई चीजें समझनी पड़ती है। तो ये शास्त्रों का निष्कर्ष, जैसे कई देश हैं, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, अब बोलो कि जी वहां नाम संकीर्तन करना है आपको, ये श्रेष्ठतम अंग है, आपका मूवमेंट ही बंद हो जाए, जेल में छोड़ो, या आपको वहां से देश से बाहर निकाल दें, जहां से आए तो वहीं वापस भेज देंगे आपको, तो क्या संकीर्तन करोगे आप? तो आपको देश काल पात्र देखना होगा, हर चीज को बहुत ध्यानपूर्वक लागू करना होगा, इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, साथ में शास्त्रों का निष्कर्ष भी जानना आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये था कुछ नाम संकीर्तन के बारे में, और इसलिए यहां विशिल जी गोस्वामी ने भी भागवत की टीका देते हुए क्रम संदर्भ जो टीका सुबह लिखा, बहुबीर मिलित्वा तदगान सुखम श्री कृष्ण गानम, मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर जोर से उच्चारण करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उसको संकीर्तन कहते हैं, शिलजी गोस्वामी लिखा है क्रम संदर्भ, शिलजी गोस्वामी श्रीमद भागवत का जो भागवत के ऊपर जो टीका दी है शिलजी गोस्वामी ने, उसको कहते हैं क्रम संदर्भ, षट संदर्भ के बाद ये क्रम संदर्भ भी एक दिया शिलजी गोस्वामी ने, श्लोक संख्या नहीं दी गई है, बहुबीर मिलित्वा तद्गान सुखम श्री कृष्ण गानम, तो इसलिए पद पुराण में बहुत सुंदर दिया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वाम अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, लेकिन अभी हम लोग इस अभेद को नहीं समझ पा रहे हैं, कि भेद नहीं है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि शुद्ध नाम प्रकट नहीं हुआ है हृदय में, इस कारण से इसका हमें आभास भी नहीं हुआ अभी तक, कभी कभी होता है नाम संकीर्तन में आभास होता है विरक्ति का, भाव भक्ति का एक लक्षण है विरक्ति, तो क्या प्राकृत भक्त को भी क्या आभास होता है, प्राकृत भक्त को क्या आभास होता है, भाव भक्ति के कौन से लक्षण का आभास होता है विरक्ति का, नाम संकीर्तन जब आप करते हैं तो फिर आप क्या होता है भूल जाते हैं कि कहां पर है, आप सड़क पे है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है ना, कोई हंस रहे हैं या रो रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं, संकीर्तन में आप भाग ले रहे हैं, वो जगन्नाथ जी के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो आप सारी शर्म खो बैठते हैं, विरक्ति है ना, आप विरक्त हो जाते हैं, तो संकीर्तन में इतना पावर है कि आपको तत्काल इतिहात्मक बुद्धि से ऊपर उठा देता है, बॉडीली कॉन्शियसनेस से उठा देता है और डिटैच कर देता है आपको, तो ये बहुत आवश्यक है। तो यहां बता रहे नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, और इसलिए सारे जो दिव्य गुण हैं वो सब नामी में पाए जाते हैं, नाम में पाए जाते हैं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। और ये बताया जाता है कि आसक्ति के स्तर पर, जब आसक्ति के लेवल पर कोई पहुंचता है तो वहां पर भक्त के लिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं रह जाता। मतलब क्या है इसका, इसका अर्थ यह है कि जैसे उस स्तर पर कोई नाम का उच्चारण करता है, शुद्ध नाम का उच्चारण करता है, तो उसे लीला की स्फूर्ति होती है, नाम लेते ही लीलाएं प्रकट होती हैं, नाम लेते ही भगवान का रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, ये सब एकदम से स्फुरित होती हैं आसक्ति के स्तर पर। एंड स्टेज ऑफ अटैचमेंट, जो कि रुचि के बाद आता है. वहां पर हम रियलाइज करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेम एंड द नामी. नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं है, और किसी प्रकार का भौतिक मिश्रण नहीं है हरिनाम में. बिल्कुल अप्राकृत वस्तु है, पूर्ण मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है. और नाम स्वयं कृष्ण है. नाम चिंतामणि है. चिंतामणि का मतलब यह है कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको नाम देता है. यानी कि जो मुक्त आत्माएं हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, जो साधना के द्वारा, नाम साधना के द्वारा जो साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको वो लक्ष्य प्राप्त होता है. और जो सकाम साधक हैं, जो कुछ फल की इच्छा रखते हैं, भौतिक इच्छा की, भौतिक फल की इच्छा रखते हैं, उनको भौतिक फल की प्राप्ति होती है. और निष्काम साधक जो होते हैं उनको वो प्राप्त होता है. इस तरह से ये बताया गया है. तो एक श्लोक यहां पर उद्धृत किया गया है भक्ति रसाम सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा. एता निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम. बोलते हैं महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट श्री भगवान नाम संकीर्तन इज द ओनली फियरलेस मेथड ऑफ साधना एंड साध्य फॉर दोज हु आर डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग द हेवनली प्लैनेट्स एंड लिबरेशन कर्मीज एंड ज्ञानीज फॉर द सेल्फ सेटिस्फाइड योगीज एंड फॉर द डिवोटीज हु आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ मटेरियल डिजायर्स. सो विश्वनाथ चक्री ठाकुर इस श्लोक के वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, बता रहे निर्विद्यमान नाम का मतलब है डिवॉइड ऑफ ऑल डिजायर इंक्लूडिंग लिबरेशन. एकांत भक्त इच्छताम का मतलब है कि ना उनको स्वर्गलोक की इच्छा है, ना उनको मोक्ष की इच्छा है. और इसके बाद यहां पर ज्ञानी लोग भी हैं और कर्मी लोग भी हैं और योगी लोग भी हैं. योगी लोग जो है जैसे आत्मराम कह सकते हैं, जो आत्म में ही संतुष्टि देखते हैं, आत्म राम जिनको कहा जाता है. मतलब जिसकी जो जो इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति करता है नाम. लेकिन नाम का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रेम में सेवा. जैसे कि बलराम आचार्य के घर पर जो सभा बुलाई गई थी, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं थे, वो तो रघुनाथ दास भी थे. और उस समय वहां पर हरिदास ठाकुर को बुलाया गया था, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को बुलाया गया था. और शायद हाँ ठीक, नंदनाचार्य के घर नहीं, वहां बलराम आचार्य के घर पे, ठीक है, बलराम आचार्य के घर पे तो वहां एक सभा बुलाई गई थी. तो वहां पर सब नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे. किसी ने कहा कि नाम के उच्चारण के द्वारा हम लोग स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकते हैं. किसी ने कहा कि नाम के उच्चारण के द्वारा हम सभी पापों से छुटकारा पा सकते हैं. किसी ने कहा कि नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं. हरदास ठाकुर ने कहा यह सब गलत है, ऐसा कहना ही, ऐसे कहने से तो नाम के प्रति अपराध है. यह कोई नाम की महिमा थोड़ा है. यह नाम तो आपको कृष्ण का प्रेम देने वाला है. नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं है. ये साक्षात कृष्ण है, ये रसमय है, ये कृष्ण प्रेम आपको देने वाला है. उसमें एक जो है स्मार्ट ब्राह्मण था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, उठ खड़ा हुआ सभा के बीच में. उसने कहा अगर ये बात गलत साबित हुई तो क्या होगा, तुम्हारी नाक कट जाए. ऐसा उसने बोल दिया सबके सामने, हरिदास ठाकुर को बोल दिया. कितना बड़ा भयंकर वैश्य अपराध कर दिया. तो तीन दिन के बाद क्या हुआ, वो गोपाल चक्रवर्ती की नाक पिघलने लग गई. हरिदास ठाकुर दुखी होकर वहां से चले गए. तो कहने का अर्थ यह है कि नाम जो है वो वास्तव में हमें क्या देख सकता है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. ठीक है. और श्रीमद् भागवत में जैसे हमने पहले ही बताया कि भाव भक्ति के लक्षण जो वर्णन किए जा रहे हैं, ये बताया गया श्रीमद् भागवत में, बताया गया है एवं बता स्वे प्रिय राम कीर्तिया जातानुराग दुत चित्त उच्चई हसती अथो रोदती रौती गायती उन्मादवम नृत्यति लोक भाया. बड़ा सुंदर श्लोक है ये. इसमें बता रहे हैं कि किस तरह जब कोई नामों का उच्चारण होता है तो उसकी क्या हालत होती है. प्राकृत भाग भी इसलिए नाम संकीर्तन में जब भाग लेता है तो इसका आभास उसको होता है, भाव भक्ति में नहीं पहुंच जाता वो, लेकिन ऐसा आभास होता है। आभास भी नहीं होता, कई बार संकीर्तन चल रहा है फिर भी जो है वो एकांत में खड़े हुए हैं, उससे वो निर्जन भजन कर रहे हैं, तब भी संकीर्तन चल रहा है तभी वो जप कर रहे हैं अपना। दुर्दैव दृश्यम यहा जनी नानुराग, चैतन्य महाप्रभु ने शायद इसीलिए श्लोक बोला, नानावकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश्यम यहा जनी नानुराग। और सारी शक्तियां आपने दे दी है, कोई कठोर नियम काल भी नहीं है, है ना? और क्या बोल रहे हैं, हाँ ये आपकी अयुत की कृपा है, और ये सब होने के बावजूद भी क्या है, कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया मेरा, दुर्दैव मिदृश्यम यहा जनी नानुराग। चैतन्य महापुरुष कह रहे हैं सारी शक्तियां नामों में है फिर भी कोई आकर्षण नहीं है नामों में, है ना? जैसे ही माला में उठाता हूं सोचता हूं कि कब आज 16 माला पूरी करूंगा, कल एकादशी है 25 माला करनी होगी, कितना बड़ा बोझ है। दुर्दैव मिदृश्यम, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर छोड़ने से पहले ये जो भजन है ना बंगाली में, शिल भक्ति ठाकुर ने शिक्षाष्टकम के ऊपर लिखा है, वो गाया भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने नहीं गाया, उनके शिष्यों ने गाया, एक थे उनके शिष्य भक्ति प्रमोदपुरी महाराज थे और एक थे श्री श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज ने शायद श्री रूपमंजरी का पदा गाया और उन्होंने ये शिक्षाष्टम के ऊपर आधारित बंगाली भजन गाया। तो उसमें एक जो पंक्ति आती है बंगाली में है वो, तो वो बिल्कुल इसी का ही अनुवाद है, दुर्दैव में दृश्यम हाजरी नानुराग, कि मेरा कोई अनुराग नहीं हुआ नामों के प्रति, कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा जब वो गा रहे थे उसी समय भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने अपने सर पर हाथ रखा, और ऐसे रखते हुए उन्होंने अपना देह त्याग दिया, दुर्दैव मदृश्यम हाजरी नानुराग, मतलब उसी समय वो भी दिखा रहे थे संसार को, प्रचार कर रहे थे कि देखो इन सांसारिक लोगों का कोई आकर्षण ही नहीं है नाम में, मैंने पूरे जीवन प्रचार किया लेकिन कोई नामों का उच्चारण करना ही नहीं चाहता है, कोई नाम संकीर्तन में भाग लेना ही नहीं चाहता है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कलिकाल के इन पति जीवों का, है ना? प्रेम की बाढ़ तो आ गई महाप्रभु की कृपा से, लेकिन कौन कौन लाभ उठाना चाहता है, ये तो हमारे ऊपर है। तो इस तरह से यहां पर बताया है, इसका अर्थ ये बता रहे हैं, इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु अडॉप्ट सच अ प्योर वॉव द स्प्राउट ऑफ प्रेम ब्लॉसम्स इनटू अनुराग विच सॉफ्टन्स द हार्ट and fills one with a deep sense of attachment for the Lord. This occurs by chanting the holy name of one's most dearly beloved Lord. At such a time, one rises above the condition of general mass of people. One becomes indifferent to public opinion. This is called Virakti. And doesn't seek approval for his activities. By natural disposition of prema, the devotee sometimes bursts out into laughter, just like an intoxicated person. Sometimes begins to weep bitterly. Sometimes it begins to call the name of the Lord in a loud voice. Sometimes begins to sing of the Lord's attributes in a sweet and melodious voice. And sometimes when he witnesses a dearly beloved directly before his eyes, he begins to dance in a most captivating manner in order to charm the Lord. तो यहाँ पर वो श्लोक में लिखा है, हसती, रोदती, रोती, गायती, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी साक्षात दर्शन करता है कृष्ण का, देखते हंसता है, ओझल होते फिर रोने लगता है, और इस तरह से आसपास क्या हो रहा है उसको पता नहीं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। नाम संकीर्तन में कोई भाग लेता है, नामों का जब उच्चारण करता है, तो प्राकृत भक्त भी ऐसे भाव भक्ति का आभास प्रकट होने लगता है। रूप गोस्वामी पांचांग भक्ति का प्रभाव बता रहे हैं कि पांचांग भक्ति इतनी प्रभावशाली, इतनी पावरफुल है, कोई नाम संकीर्तन में भाग भी लेता है, he becomes detached। जैसे हमने देखा कि अभी हाल ही में करीब 350 भक्त आए थे चौपाटी से, और बहुत सुंदर हरिनाम हुआ यहाँ पर ईस्ट ऑफ कैलाश, तो एक बहुत बड़ा समूह सा लग रहा था, मुंडित केश, है ना, शीकाधारी और धोती कुर्ता पहने हुए, घेरुए वस्त्र, श्वेत वस्त्रों में भक्त लोग जा रहे थे, युवा भक्त, 15 से 25 आयु के बीच में, एज के बीच में, गड़ी की सड़कों में, संत नगर की सड़कों में संकीर्तन कर रहे थे। उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शर्म नहीं उनको, कौन देख रहा है, कौन हंस रहा है, और तो और को देखकर और लोग भी नाचने लगे, और लोग भी शामिल हो गए, है ना। और लोगों को भी शुद्ध नाम का आभास हुआ, नाम संकीर्तन को केवल देखने मात्र से, उसको सुनने मात्र से, और लोगों को भी लाभ हो गया। नाम संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्यों उसका उद्घाटन किया, कारण क्या है? कारण यह है कि सब लोग नामों का जप करेंगे नहीं, कारण यह है कि लोग सब लोग कृष्ण कथा सुनेंगे नहीं, कारण यह है कि संकीर्तन में लोग आएंगे नहीं बुलाने पर भी। जब हरिनाम होता है तो कितनी मुश्किल से हम लोग निकलते हैं बाहर, दुर्दैव में दृश्यम याजनी नानुरागा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई निकलना ही नहीं चाहता हरिनाम के लिए, है ना। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है हरिनाम में जाना, दुर्दैव में दृश्यम याजनी नानुरागा, कितना बड़ा रोग है। भव महादवाग्नि निर्वापनम चेतो दर्पणम अर्जुनम, चैतन्य महापुरुष शिक्षाष्टक में पहले ही बोल रहे हैं, चेतो दर्पणम अर्जुनम, इससे तो चित्त के दर्पण का मार्जन होगा। चेतो दर्पणम अर्जुनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, फायर ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, फायर ऑफ सेपरेशन। श्री चैतन्य महापुरुष फीलिंग सेपरेशन, देयर इज अ फायर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, बट those who are conditioned, जो बद्ध अवस्था में है, they are feeling separation from Maya. They are also feeling separation from Maya. भव महादावाग्नि निर्वापनम, तो उनके हृदय में भी अग्नि जल रही है, बद्ध जीवात्माओं के हृदय में भी अग्नि जल रही है ना। कृष्ण से कोई विरह नहीं है, माया से विरह है दिन रात। तो उसमें क्या होता है, मून बीम जो है ना, चंद्रमा की किरणें, कैरव चंद्र का वितरणम विद्या वधु जीवनम, तो उस समय जो चंद्रमा की किरणें हैं, यानी जिसकी तुलना संकीर्तन की तुलना इससे की गई है, चंद्रमा की किरणें जब पड़ती हैं तो कितना ठंडक सा लगता है। खासकर आप जब जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, या जब पूर्णिमा का दिन होता है, शरद पूर्णिमा का दिन होता है, शरद पूर्णिमा का जब पहला दिन होता है कार्तिक के मास में, और आप उस समय गोवर्धन की परिक्रमा करें, और उस समय चंद्रमा जो है बिल्कुल लाल दिखता है, गिरिराज जी के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, और भक्त लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे होते हैं रसिक भक्तों के साथ, कितना आनंद आता है, नहीं आता है कि नहीं? कभी किया होगा तो आनंद आएगा ना। कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, तो ये क्या है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, उस समय क्या होता है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम। उस समय क्या होता है कि प्रतिपद, जैसे ही वो संकीर्तन के, जब आप संकीर्तन में भाग लेते हैं तो क्या होता है, जो भव महा दावाग्नि, आपके हृदय में जो दावाग्नि चल रही है, फॉरेस्ट ऑफ मेटीरियल या फायर ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस, उस फायर में दावनल, संसार दावनल में आप फंसे हुए हैं। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं, संसार दावनल में आप फंसे हुए हैं, और संसार दावनल में अब आग लगी हुई है, और उसमें जब संकीर्तन चलता है, संकीर्तन आंदोलन में आप प्रवेश करते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं, तो क्या होता है, आपके ऊपर एक चंद्रमा की किरणें जैसे पड़ रही हो, एक ठंडक सी मिलती है आपको, एक राहत सी मिलती है, उस अग्नि से राहत सी मिलती है, ऐसा प्रतीत होता है कि बरसात हो गई, अब संकीर्तन की बरसात हो गई, और जो जंगल की आग है वो बुझ गई है, हमारे हृदय की आग बुझ गई है, भवरोग की आग बुझ गई है, और क्या हो रहा है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम, प्रतिपद पूर्णामृता आस्वादनम, हर कदम में आपको आनंद की अनुभूति होगी। सर्वात्म सपनम परम विजयते, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, ऑल ग्लोरीज टू द संकीर्तन मूवमेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो इसलिए ये नाम संकीर्तन जो है इतना पावरफुल है, इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे वहा शक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लोयले पाए प्रेम धन। प्रेम धन आकर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम संकीर्तन में सब लोग भाग लीजिए, भागिए मत, भाग लीजिए नाम संकीर्तन। कुछ लोग भाग जाते हैं नाम संकीर्तन देखते ही, है ना। तो जहां जहां नाम संकीर्तन होता है वहां पर जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए उत्साहित होकर, तब आनंद आएगा। और सक्रिय होकर भाग लेना होगा, हाथ खड़ा करके करताल बजाते हुए उच्चारण करते हुए सबको उच्चारण करना होगा। संकीर्तन में नाम हरि नाम में दो मुख्य बातें हैं, मृदंग और करताल लेना ही लेकर गाना ही संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन का वास्तविक अर्थ है, संकीर्तन का वास्तविक अर्थ है जब सब लोग गा रहे हों, सब लोग हरि नाम ले रहे हों और सब लोग मिलकर नृत्य कर रहे हों। नृत्य और कीर्तन जब सब मिलके करते हैं उसको कहते हैं नाम संकीर्तन। क्योंकि रासलीला में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि केवल वहां पर नृत्य कर रहे हैं और कोई गा नहीं रहा है, या सिर्फ गा रहे हैं कोई नृत्य नहीं कर रहा है। तो इसी तरह पंचतत्व भी है, जब वहां शिवासांगन में वो लोग संकीर्तन कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है वो सब बैठ के सिर्फ रोते गा रहे हैं, है ना, कोई मृदंग बजा रहा है, नहीं, वो सब नृत्य कर रहे हैं, भाववेश भावमय नृत्य कर रहे हैं। चलो हम भावमय नृत्य ना करें लेकिन कुछ तो सिखाया शिल प्रभुपाद ने, वैष्णव लोग सिखा रहे हैं जिस तरह से नृत्य करना चाहिए, उस तरह से तो करें अभ्यास। हम लोग को कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करना होगा नृत्य करने का। इसे शिल रूप गोस्वामी कहते हैं वन मस्ट लर्न हाउ टू डांस बिफोर द डीटी। चलो डीटी मतलब क्या है, तो डीटी इज एवरीवेयर, यही डीटी जो है नाम के रूप में है। द डीटी इज देयर इन द फॉर्म ऑफ नेम, द नेम एंड द डीटी दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जब नामों का उच्चारण हो रहा है तो हमें नृत्य करना चाहिए, सब मिलके नृत्य करें, सब मिलकर कीर्तन करें, तब वो होगा पूर्ण नाम संकीर्तन, तब उसे पूरा आनंद आएगा। लेकिन उसमें कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग उसमें सब कमिटीज बनाते हैं, है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि ये हरिनाम तो हो रहा है, कुछ हमारे और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, है ना, बोलते हरिनाम के समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे रास्ते में। आप आ रहे हो ना वहां पे करोल बाग में हरिनाम है आज, वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। यानी हरिनाम सेकेंडरी हो गया, हमारा डिस्कशन प्राइमरी हो गया, फिर आनंदा बुद्धिवर्धन कहां से आएगा। और ऐसे करते करते पूरी यात्रा समाप्त हो जाती है, बोलते प्रभु जी प्रसाद का समय हो गया, आइए, बड़ा अच्छा रहा हरिनाम, क्या आनंद आया आज हरिनाम। तो ये सब जो है बहुत हानिकारक है, तो इनसे हमें बचना पड़ेगा। और ये जो है संकीर्तन का वह भाग ना लेने से क्या होता है, संकीर्तन की महिमा जानकर भी अगर हम लोग संकीर्तन में भाग नहीं लेते हैं तो ये नाम के प्रति अपराध होता है। कुछ विशेष बातें हैं नाम संकीर्तन को लेते हुए, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, अगर समय क्या है, ठीक है, और 10 मिनट फिर इसको और एक बात और बता दें, एकांग भक्ति भी कहते हैं इसको। एकांग भक्ति का मतलब है कि ये एक अंग का अगर हम पालन करते हैं तो बाकी सारे अंग इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे हमने पहले बताया भक्तिनो ठाकुर भी कह रहे हैं जैव धर्म में। केवल बात नाम संकीर्तन करने से ही नहीं होगा, किस प्रकार नाम ग्रहण करना होगा उस बारे में श्रीमन महाप्रभु का निर्देश, जे रूप लोयले नाम प्रेम उपजोय ताहा लक्षण सुनो स्वरूप राम राय, त्रिनाद अपि सुने चेन तरोर अपि सही सुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस त्रिनाद अपि भाव को रखते हुए श्री नाम संकीर्तन करना होगा, इसके अलावा किसी की बुराई के कार्य को छोड़ना होगा। अनुंदक होई जे कृष्ण कृष्ण बोले सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी वे होले, जे मोर दासेर सकृत निंदा करे मोर नाम कल्पतु ताहार संहारे। उपरोक्त शास्त्र वाक्यों से यही समझा जा रहा है कि किसी की बुराई करना ना छोड़कर नाम ग्रहण करने पर श्री नाम उसके प्रति रुष्ट होकर उसका संहार करेंगे, वो नाम ही उसका संहार कर देगा। यानी कि आप निंदा करेंगे नाम के साथ किसी वैष्णव की, वो नाम ही संगार कर देगा। अतः जिस मुख से किसी की बुराई की जाती है उस मुख से हरि नाम लेने से ही क्या और ना लेने से ही क्या। अतः साधु सावधान, अपराध छोड़ी कौर नाम संकीर्तन, अचिराग पावे तवे श्री कृष्ण चरण। तस्विधा नाम अपराध भी सावधानी पूर्वक वर्जन करके चलना होगा, यानी कि नाम अपराधों से बचना होगा जो कि दिए गए हैं। भजन दो तरह का होता है, एक सासंग भजन, दूसरा अनासंग भजन। ईश्वर के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए आसक्ति युक्त चित्त से जो नाम अथवा भक्ति अंग की साधना की जाती है वह सासंग भजन है। और व्यवहारिक जगत में विविध विषयों की चिंता करते हुए यंत्र चालित की भांति जो भजन है वह अनासंग भजन है। समझ गया? नहीं समझे दोबारा पढ़ो। भजन दो तरह के होते हैं, एक को भोजन कहते हैं, एक होता है सासंग भजन, दूसरा है अनासंग भजन। ईश्वर के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए आसक्ति युक्त चित्त से जो नाम अथवा भक्ति अंग की साधना की जाती है वह सासंग भजन है। और व्यवहारिक जगत में विविध विषयों की चिंता करते हुए यंत्र चालित की भांति जो भजन है वह अनासंग भजन है। मैकेनिकल जिसको बोलते हैं ना, मैकेनिकल साधना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। उस कभी ऑफिस की चिंता हो रही है, कभी घर की चिंता हो रही है, कभी अपने मन की चिंता हो रही है ना, कभी अपनी चिंता हो रही है बार बार, लेकिन हरि नाम की चिंता नहीं हो रही है। इस अनासंग भजन से विशेष कोई अच्छा फल नहीं मिलता है। नाम ग्रहण करते समय मन को एकदम कृष्ण भावनामय बनाते हुए अत्यंत आदर के साथ श्री नाम ग्रहण करना ही विधेय है। इसलिए मैं सुना था महाराज से भी कि शुरू में हमें प्रार्थना करनी होगी। देखिए नाम उच्चारण करने के लिए, नामों का उच्चारण करने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है, तैयार करना होता है। जैसे कि अगर आप कुछ खाना पकाना चाहते हैं तो पहले आपको चूल्हा तैयार करना होता है ना, उसके बाद आपको सामग्री एकत्रित करनी होती है, अग्नि जलाना पड़ता है, तभी आप कुकिंग के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं। ऐसे थोड़ा आप कुकिंग करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से पहले आपको एक फाउंडेशन, एक आपको प्लेटफॉर्म बनाना होगा, प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। और उसी के लिए हम लोग सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु अष्टकम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे विघ्नों को दूर करें, अनर्थों को दूर करें, अपराधों से हम बच पाएं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमारे ऊपर कृपा करें। फिर चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम का पाठ पढ़ते हैं, और नाम अपराधों के बारे में रोज सुनते हैं। इन सब को सुनने के बाद हम लोग जप करना प्रारंभ करते हैं, यानी कि ये सब हमारे लिए एक एक प्लेटफॉर्म बनाता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या होते हैं, तैयार होते हैं हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। जैसे महाराज बता रहे थे कि हम लोग क्या करें, गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हुए, गुरु की कृपा, वैष्णव की प्रार्थना, वैष्णव से प्रार्थना करते हुए हम षट गोस्वामियों से भी प्रार्थना करें, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छई गोसाई कोरी चरण बंदन, जहां होए थे विघ्नानाश अविष्ट पूर्ण। विघ्न नाश हो जाते हैं और सारे इच्छाएं आपकी जो है वो पूरी हो जाती है। इन छह गोस्वामी की जब कृपा होगी निश्चित रूप से वो प्रार्थना को सुनेंगे। और उसके बाद पंच तत्व की कृपा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो फिर समझा जाएगा केवल मात्र नाम लेने से ही नहीं होगा, त्रिनाद अपनी भाव की रक्षा करते हुए अनुन्दुक होकर अपराध से दूर रहते हुए भारी भावना का त्याग करते हुए कृष्ण भावनामय होकर अत्यंत आदर की बुद्धि रखते हुए श्री नाम ग्रहण करना करने पर अति शीघ्र ही श्री नाम का फल प्रेम प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये सब अंगों का पालन करने का क्या उद्देश्य क्या है। इतना सारा हमने 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किया और दिन प्रतिदिन सुनते रहे, इसका उद्देश्य क्या है। ये वैदिक भक्ति कि अंगों का पालन हम लोग कर रहे हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं, क्योंकि हमारा आकर्षण स्वाभाविक नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार हम लोग इन भक्ति के अंगों का पालन करना चाहते हैं, है ना। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है बताया है, चाहे किसी भक्ति के अंग की साधना क्यों ना की जाए, सब अंगों में ही इसे स्मरण को रखना होगा। स्मरण का अर्थ ईश्वर के नाम रूप गुण लीला का स्मरण। सार बात यह है, मन को सर्वदा कृष्ण भावनामय बनाकर रखना होगा। भावना को एक विशेष क्रिया है, भावना एक विशेष क्रिया है। जैसे यदि कोई मन किसी नारी की चिंता करता है तो शरीर में काम भाव जागृत होता है। यदि कोई सोचा जाए कि मैं नमक लगाकर इमली खा रहा हूं तो क्या होगा? जी में पानी आ जाता है, आया नहीं? यदि मैं किसी दुश्मन के बारे में सोचूं तो कुछ क्षण में ही गुस्सा आ जाता है। अर्थात चिंता के विकार शरीर में प्रकाशित होते हैं। बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़े महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है यहां पर। ऐसे ही यदि होता तो जो हमेशा ईश्वर की चिंता में लगे रहते हैं उनमें धीरे धीरे ईश्वर के गुण दिखाई पड़ेंगे। चिंता की ऐसी एक असाधारण शक्ति है स्मरण की। चिंता, यहां पर चिंता शब्द का सरल शब्दों में उपयोग किया है। स्मरण थोड़ा सा एक गहरा शब्द लगता है, तो चिंता बोला गया है। सांसारिक बातों की चिंता करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी चेता पर पड़ता है और वो शरीर में विकार दिखाई पड़ते हैं। तो इसी तरह से जब हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, उनके नामों का, उनके रूप का, उनकी लीलाओं का, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा ना, वो बेकार नहीं जाएगा। ऋषियों ने सारे शास्त्रों का मंथन करके सब मुख्य एक विधि तथा एक निषेध का निर्णय किया है। स्वर्तव्या सतम तम विष्णु विस्मृत्य ना जात उचित सर्वे विधि निषेधा स्फुरेत एव किंकर। हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में जितने भी विधि निषेध हैं, इन दोनों में विधि निषेधों के अनुगत किंकर हैं। इन दोनों विधि निषेधों के अनुगत किंकर हैं। गीता में भी भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चिंतन तो मां नहीं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरती नित्यशः। जो अनन्य चित होकर भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं अत्यंत आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। श्रीमद भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी यही कह रहे हैं, हे राजन, आप हर तरह से भगवान केशव को हृदय में सावधानी पूर्वक चिंता करते रहें, उस चिंतन के प्रभाव से मृत्यु के समय आप परम गति को प्राप्त करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि स्मरण कैसे कर पाएंगे हम, ये चिंतन कैसे होगा? तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि कीर्तन के प्रभाव से स्मरण होता है। श्रवण जब कीर्तन करते हैं तो उसका जो परिणाम निकलता है वो है स्मरण। जिसने पूरे जीवन भर संकीर्तन किया है वही अंत में कृष्ण का स्मरण कर पाएगा, यह है इसका रहस्य। बिना संकीर्तन किए, बिना प्रचार किए, जो क्या कहते हैं उसको, इमेच्योर स्टेज में कोई निर्जन भजन करने चले जाता है, वो बहुत बड़े खतरे में होता है, उसके गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। और ऐसे भजन को चीटिंग कहा गया है, कटअप कहा गया है, तो ये हमारे आचार्यों ने इसका विरोध किया है। इसलिए इस प्रचार पर तक आचार्य लोग जोर देते हैं। प्रचार से किसी का लाभ हो ना हो, हमारा जरूर लाभ होगा, क्योंकि हम संकीर्तन तो कर ही रहे हैं। प्रवचन के द्वारा किसी को समझ आए ना आए, लेकिन प्रवक्ता को तो लाभ पहुंचेगा ही, है कि नहीं? इसलिए कोई भक्त बने ना बने, कोई किताब ले ना ले, आप बोलते जाओ, बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते जाओ, बार बार कृष्ण कथा करते जाओ, परिणाम क्या होगा? आपको स्मरण हो जाएगा। इसलिए आचार्य लोग अगर हम प्रचार के लिए भेजते भी हैं तो यह ना सोचें कि हम लोग प्रचारक बन गए हैं, बल्कि यह सोचें कि प्रचार के लिए हमें जो भेजा जा रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण साधना का अंग है, हमारे लाभ हेतु हमें भेजा जा रहा है। हम प्रीचर नहीं बने हैं, हम साधक हैं, तो प्रचार भी हमारे लिए साधना है, संकीर्तन करना भी एक साधना है, और उससे सबसे पहले लाभ मुझे पहुंचेगा ये सोचकर हम प्रचार में जाएं। प्रभु जी, भक्त तो कोई बन नहीं रहे, बुक्स तो निकल नहीं रही है, नो प्रॉब्लम, आप तो भक्त बन गए ना, है ना, ये है सफलता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर एक आंदोलन में एक भी शुद्ध भक्त बन जाए तो मैं समझूंगा यह आंदोलन सफल हो गया। तो किसी को सफलता मिले, किसी को सफलता मिले ना मिले, किसी को लाभ पहुंचे ना पहुंचे, जो प्रचार कर रहा है उसको तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। चित्त को अन्य अन्य विषय की तरफ जाने ना देकर पुनः पुनः हे पार्थ अभ्यास के द्वारा उसको स्थिर करके उस दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से साधक उस पुरुष को ही प्राप्त होता है। बार बार अभ्यास करना होता है। By constant practice and detachment it is possible, Arjun. कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हो नहीं रहा है, मैं उठ नहीं पाता हूं, जप नहीं कर पाता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल है मन को काबू में करना, बट अगर आप अभ्यास करोगे by constant practice and detachment it is possible. Impossible कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, अभ्यास की आवश्यकता है। सब साधनों का ही मूल उद्देश्य चित्त को जागतिक विषयों से आकर्षित करके ईश्वर में निविष्ट करना है। क्रमशः चिंता करते करते मन ऐसी तन्मयता को प्राप्त होगा कि देह की स्मृति तक ना रहेगी। जब तक मन बाहरी वस्तुओं में आसक्त रहेगा तब तक वास्तविक भजन के किसी आस्वादन को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक हमारा एक्सटर्नल अटैचमेंट रहेगा, एक्सटर्नल अट्रैक्शन रहेगा सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति, तब तक इंटरनली कैसे हम डेवलप करेंगे। इसलिए हमें श्रवण कीर्तन के डोज को बढ़ाना होगा। जितना टॉनिक आप लेंगे, जितना श्रवण कीर्तन अधिक करेंगे, जितना हम प्रचार करेंगे, उतना जो है हम लोग क्या हो जाएंगे, मल्टी क्या बोल रहे थे, वल्टी वाइटामिन, मल्टी वाइटामिन का कार्य करेगा ये प्रचार संकीर्तन जो है मल्टी वाइटामिन। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं एक, उनका नाम है विवेक दास। विवेक दास पूछ रहे हैं आपने तो यथार्थ ही कहा लेकिन भजन करते करते मन कब दूसरे विषयों में आविष्ट हो जाता है वे स्वयं ही नहीं समझ पाते हैं। किस विचार बुद्धि की अपेक्षा ना करते हुए ही मन विषयों के पीछे दौड़ जाता है। अब इस दोबारा मन को किस प्रकार संयत करूं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाती बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ने वायु रेव दुष्क्रम। तो भगवान ने क्या बोला, उत्तर दिया असत्य महाभाव मनो दुर्निर्गम चलम अभ्यासेन तुकोन्त्या वैराग्येन च गृह्यते। है ना, तो वही उत्तर है पहले जो बताया आपने। हे महाभाव मन स्वभावता ही चंचल है, उसका निरोध करना कठिन कार्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हे कौन्तेय अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा इसको वशीभूत किया जा सकता है। अभ्यास की एक ऐसी शक्ति है कि अत्यंत दुसाध्य कार्य भी अभ्यास के द्वारा सहज साध्य हो सकता है। बड़े बड़े राक्षस हिरण्यकश्यप रावण कैसे वो सफल हुए, अभ्यास के द्वारा। तपस्या एक अभ्यास ही तो है। खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे दिन रात खड़े रहे, वो उनकी साधना थी, उनको साध्य की प्राप्ति हुई। उन्होंने जो साध्य बना के रखा था वो उनको प्राप्त हुआ। तो साध्य को समझते हुए, साध्य को ध्यान रखते हुए हमें अपनी साधना करनी है, और ये साधना ही हमारे लिए अभ्यास है, यही हमारे लिए योगाभ्यास है। योगाभ्यास, योगाभ्यास बोलते ना जैसे, तो हमारे लिए ये योगाभ्यास है। योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, और जुड़ने के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, प्रत्येक दिन साधना कर रहे हैं। कितना भी कष्ट हो, कितने भी पीड़ा हो, शरीर को मन को वाणी को होने दो, लेकिन हमें अपना अभ्यास पूरा करना है। इसी को तपस्या कहते हैं। पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, उच्चारण ठीक नहीं हो पाएगा, कई कारण से हम लोग पीड़ित हैं कली काल में, लेकिन अभ्यास नहीं रोकना है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते षडभीर भक्ति प्रसिद्धति। एंथुसियाज्म पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, वो दिन आएगा हम होंगे कामयाब एक दिन। ये केवल वैष्णव समाज में लागू होता है स्लोगन। तो इसलिए हम सबको अपने मन को समझाना है। अभ्यास की ऐसी शक्ति है, क्रमशः अभ्यास करते करते चल सकता है। शारीरिक अभ्यास की अपेक्षा मानसिक अभ्यास का फल और भी अद्भुत है। हम मन ही मन जिस प्रकार सोचते हैं, हृदय में उसी का एक संस्कार रह जाता है। इस प्रकार के संस्कार की समृष्टि ही हमारा स्वभाव है। यह संस्कार ही मनुष्य को कर्म पथ पर प्रेरणा जुटाता है। पहले जैसी चिंता तथा कर्म किया है, वही मेरा वर्तमान संस्कार है। एवं वर्तमान में जैसी चिंता तथा कर्म किया जाएगा, वही होगा मेरा भविष्य का संस्कार। हाँ, समझ रहे इस बात को? क्या कौन बताया बताइए, यहाँ जो हमने अभी पढ़ा था वो कौन समझाएगा? वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए ना। हम इंग्लिश में बोल दिया सरलता से।
जो भी विषय वासनाओं की वजह से पीड़ित हैं, वो सब हमारे संस्कारों से हैं, और ये संस्कार हमारे पूर्व जो भी हमारे कर्म और चिंताएं थी, उनके चिंतन थे, उनके कारण वश हैं। आगे भविष्य में जो भी हमारे होंगे, वर्तमान के हमारे
जो भी चिंता और कर्म अभी करेंगे, वो भविष्य के संस्कार होंगे, है ना। आज अथवा हम श्रवण कीर्तन करेंगे, आज हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, आज हम स्वाध्याय करेंगे, आज हम लोग हरिनाम ठीक से लेंगे, आज हम मंगल आरती में आएंगे, तो क्या होगा? भविष्य में वही संस्कार होंगे, वही संस्कार जो है होंगे, जिसका जिसका प्रभाव हमारे मन में सबसे अधिक होगा। जीवन के अंत काल में उसी का ही हमें चिंतन होगा, हमें उसी का स्मरण होगा। यम्यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। भाव भावित होंगे आप, यानी कि आपके अगर चित्त में मन में अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो ठीक है, आप कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव आपके मन में कृष्ण का रहा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पुनर्मुशी का भवा, दोबारा आ जाओ संसार में, फिर से हरे कृष्णा करो, फिर से 16 माला करना, फिर से 4 नियम पालन करने, इस कौन में आना है कि नहीं, फिर से गाना सुबह संसार दावा। 4 मिलेगा लेकिन देर हो जाएगी, है ना। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए देरी ना करें। अतः मन को हमेशा ईश्वर को चिंता में लगाए रखने का अभ्यास जरूरी है। आगे चलकर यह अभ्यास ही संस्कार के रूप में बदल कर प्रेरणा प्रदान करेगा। पिता का संचित धन नहीं है, इसलिए क्या व्रत करना है, नहीं मुझे उपार्जन करना होगा। उसी प्रकार मेरा पूर्व संस्कार नहीं होने के कारण प्रत्नहीन होकर बैठे रहने से कभी भी नहीं होगा, उसके साथ ही चाहिए वैराग्य। ईश्वर के अलावा सांसारिक वस्तुओं में अनासक्ति का नाम वैराग्य है। मन का स्वभाव ही है जो कुछ अच्छा लगे उसकी चिंता करना, है कि नहीं। अतः जब तक जागतिक वस्तुओं का स्वाद मिलता रहेगा, सुनिए ध्यान से, जब तक जागतिक यानी कि जागतिक मतलब जो आपको जगतीय है ना, जगतीय वस्तुओं या जागतिक वस्तुओं का स्वाद मिलता रहेगा, तब तक मन उसी का चिंतन करता रहेगा, उसी में रुचि हमारी। ये टेस्ट है हमारी, कोई नाम रुचि नहीं है, नाम है, नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आकर्षण है। अब सोचिए इस बात को ध्यान से, है ना, कितना बड़ा जोक लगता है। आप नाम तो ले रहे हैं लेकिन चिंतन किसी और का है, कितने बड़े ढोंगी हैं हम सब, है ना। गीता भगवान ने कहा है कि सच पर्सन इज प्रिटेंडर, है ना, मिथ्याचारी बोला भगवान ने गीता, मिथ्याचारी धोखेबाज, कि मन से तो वो कुछ और सोच रहा है और मुख में हरी नाम, मुख में हरी हरी कर रहा है, अंदर से कुछ और। तो ये जो है बहुत खतरनाक है, और इसलिए यहां पर क्या बताया है, जागतिक वस्तुओं का चिंतन करना, उस स्वाद मिलता रहेगा तब तक मन उसकी चिंता करता रहेगा। इसलिए नित्य अनित्य वस्तुओं के विचार की आवश्यकता है। जो कुछ भी क्यों ना करें, सब कुछ में ही विवेक को सजग रखना होगा। अर्थात जो कुछ अनित्य है तथा ईश्वर को भुलाने का कारण है, उसका विचार पूर्वक परित्याग करना होगा। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, एक्सेप्ट विच इज फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, रिजेक्ट विच इज अनफेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। मन एक तराजू है जिसके एक पल्ले जागतिक वस्तु तथा दूसरे पल्ले पारमार्थिक यानी कि स्पिरिचुअल वस्तु है। एक तरफ का पलड़ा जितना भारी होगा दूसरी तरफ का पलड़ा उतना ही ऊपर को उठता चला जाएगा। यह जगत अनित्य एवं सुख शून्य है, यह बोझ जितना प्रगाढ़ होता जाएगा मन जागतिक वस्तु की तरफ से उतना ही उठता चला जाएगा। सिंपल, यानी कि जो तराजू के दो पलड़े हैं, दूसरे पलड़े में अगर आप भार बढ़ा देते हैं श्रवण कीर्तन का, चिन्मय वस्तुओं का, तो ये अपने आप क्या होगा, नीचे हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो वो ऊपर हो जाएगा। तो मन तराजू के समान, इसलिए आप तुलना की गई, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ईश्वर के अलावा मेरा और कोई नहीं है, ये समझ जितनी ही दृढ़ होगी सारी वस्तुओं के प्रति उदासीनता उतनी ही बढ़ती रहेगी। समस्त वस्तुओं के प्रति उदासीनता जितनी बढ़ेगी उतना ही मन कृष्ण भावनामय हो जाएगा। ये सब बातें इसलिए महत्वपूर्ण है। आप पूछेंगे कि 64 भक्ति अंगों का इससे क्या मतलब है? इससे बहुत ही गहरा मतलब है, इससे बहुत ही गहरा रिश्ता है। क्योंकि जब तक हम लोग इस बात को सही समझेंगे हम भक्ति के अंगों का पालन कैसे ठीक से कर पाएंगे। केवल तोते की तरह 64 भक्ति के अंगों रटने से क्या फायदा, जब तक हमारे हृदय में ये भावना नहीं होगी कि किसका पलड़ा हमें भारी करना है, कौन सा पलड़ा हमें भारी करना है और किस तरह से उसको करना है। समस्त वस्तुओं के प्रति उदासीनता जितनी बढ़ेगी, जो निर्जला व्रत करते हैं गर्मी के दिनों में अपनी कोशिश के बिना ही शीतल जल की चिंता वन में जलती है, ठीक है रहेगा नहीं? प्यास जितनी बढ़ेगी जल की चिंता उतनी ही अधिक होगी, भूख जितनी अधिक लगेगी भोजन की चिंता उतनी ही ज्यादा होगी, ध्यान से सुनिए। तब खाद्य वस्तु की चिंता के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी, उसी प्रकार ईश्वर की चिंता में मन को लगाए रखने के लिए एक भूख की आवश्यकता है, एक अभाव बोध की जरूरत है। इस अभाव बोध के ना होने से बलपूर्वक भी मन को ईश्वर की चिंता में लगाए रखना अत्यंत अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। स्वाभाविक है कि जब आप निर्जल एकादशी के दिन जल की चिंता करते हैं, हम लोग कितनी चिंता करते हैं, उस दिन लगता है कि जल ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है संसार का, जल ही जीवन है, तब हम लोग अनुभव करते हैं इस बात को, है ना? तो जगह जगह प्याऊ लगा सकते हैं जल सेवा, और जिस दिन अगर भूखे हैं तो उस दिन खाद्य पदार्थ की चिंता होती है। विवेक दास पूछ रहे हैं, सब कुछ समझ रहा हूं लेकिन ये भूख या भाव बोध मन में क्यों नहीं जाग रहा है? वो पूछ रहा है, समझ रहा हूं कि किसे सभी कुछ अनित्य है, जागतिक वस्तुओं में रमे रहना मेरे ईश्वर स्मृति का कारण है, फिर भी अभाव बोध क्यों नहीं होता है? तो उत्तर दे रहे हैं, मुझे भूख नहीं है यह कहने पर समझना चाहिए कि मैंने कुछ खाया है। अगर मुझे भूख नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ खाया है। मुझे प्यास नहीं है इसका मतलब मैंने कुछ पिया है। कुछ ना खाने पर अवश्य ही भूख लगेगी। उसी प्रकार भगवान के लिए एक खालीपन का एहसास न होने के कारण जागतिक वस्तुओं के प्रति मेरी आसक्ति रह गई है। जागतिक वस्तु का अर्थ है केवल रुपया पैसा घर कुटुंब ही नहीं बल्कि सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि की वासना भी है। घर कुटुंब मित्र इत्यादि को छोड़ना सरल है लेकिन प्रतिष्ठा या सम्मान के एहसास को छोड़ पाना अत्यंत दुर्बल है, कठिन है। दूसरी वस्तुओं में आसक्ति रहने पर बचने की आशा फिर भी बनी रहती है लेकिन ये प्रतिष्ठा भागनी, जैसे भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर भी कहते हैं प्रतिष्ठा भागनी, क्या बोलते कंचन कामनी प्रतिष्ठा भागनी छाड़िया सहित शुद्ध वैष्णव। लेकिन ये प्रतिष्ठा भागनी यदि एक बार साधक के हृदय राज्य पर आक्रमण करे तो फिर परमार्थ प्राप्ति की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। बाकी वस्तुएं तो बड़ी आसानी से त्याग देते हैं, हाँ जी घर छोड़ दिया शहर छोड़ दिया देश छोड़ दिया, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी। साधक यदि एक बार समान पिशाचिनी के प्रति आकृष्ट हो जाए तो उसके और परमार्थ लाभ की आशा करना ही बेकार है। समान बोध साधक का कितना बड़ा दुश्मन है ये कहकर समझाने की बात नहीं है। इस शत्रु के चक्र में एक बार यदि साधक फंस जाए तो उसकी सारी पारमार्थिक चेष्टा निष्फल हो जाती है। विचार करके देखने पर समझ जा सकता है कि संसार अनित्य है, एक ईश्वर ही मेरे एकमात्र अपने जन है, ये केवल मुंह से ही कह रहा हूं कार्यत नहीं है। वास्तव में एहसास दृढ़ होने पर ही किसी प्रकार की विचार बुद्धि की परवाह ना करते हुए मन स्वतः ईश्वर भावनामय हो जाएगा और सांसारिक वस्तुएं नीरस प्रतीत होंगी। एक कहानी कह रहा हूं, सुनो, अगली बार सुनाएंगे, बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत बड़े कहानी सुना रहे, बहुत बहुत स्ट्रांग स्टोरी है, एक हफ्ते के लिए टॉनिक रहे भाई, क्योंकि इन सबका जो है, हमारा जो कहने का अभिप्राय है, इस सबका संबंध हमारे भजन से बहुत है। इन बातों का जब हम ध्यान ही रखेंगे तो हरे कृष्णा से नहीं चलेगा, सिर्फ साथ में इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी भजन हमारा अनुकूल होगा। क्योंकि रूप गोस्वामी ने शुरू में बोला है, क्या बोला उन्होंने, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति करनी है तो इन बातों को समझना होगा, इसलिए यहां पर ये बात बता रहे हो कि 64 भक्ति के अंग तो किए पालन, लेकिन क्या है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम नहीं है, या ज्ञान कर्मादि अनावृतम नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग उत्तमा भक्ति कर रहे हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से स्टोरी। किसी देश का एक राजा बहुत दिनों से एक दुरा रोगी बीमारी में भोग रहा था। बहुत से वैद्यों को दिखाकर भी कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला। इसके बाद राजा प्राणों की आशा छोड़कर दिन बिताने लगे। ऐसे समय उसके महल में एक सन्यासी आया। राजा ने बड़ी अच्छी तरह से सन्यासी की सेवा की। सन्यासी भी राजा की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब जाने का समय आया, उन्होंने राजा के पास विदा मांगने जाकर कहा, महाराज आपने मेरी बहुत सेवा की है, आपकी सेवा से मैं अत्यंत तृप्त हुआ हूं, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा ने कहा, देखिए महात्मा जी, जागती किसी चीज की कमी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से एक दुरा रोगी बीमारी से कष्ट पा रहा हूं, क्या आप मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। सन्यासी ने कहा, महाराज मैं आपको अवश्य ही व्याधि मुक्त कर दूंगा, लेकिन मैं जैसा निर्देश दूंगा उसका आपको पालन अवश्य करना होगा, नहीं तो मेरी दवा का कोई फल नहीं मिलेगा। सन्यासी ने कहा, देखिए महाराज, जितने दिन मैं दवा का प्रयोग करूंगा उतने दिनों में आपको आपके मन में किसी प्रकार के भोग विलास के उदय होने पर दवा की सारी क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी। सन्यासी कह रहे हैं, जितने दिन मैं दवा का प्रयोग करूंगा उतने दिन स्त्री का मुख तक नहीं देखा जा सकेगा, यदि आप राजी हो तो मैं दवा का प्रयोग करा सकता हूं। राजा ने अत्यंत आनंद के साथ कहा, देखिए महात्मा जी, मैंने तो प्राणों की आशा ही एक तरह से छोड़ दी है, आप यदि मुझे बीमारी से ठीक कर सकेंगे तो फिर यह तो एक साधारण सी बात है। दूसरे दिन सन्यासी ने तरह तरह के पेड़ों की जड़ बेल इत्यादि लाकर अपने हाथों से रस निकालकर दो सोने के पात्रों में एक से आधा तथा दूसरे पूरा पात्र भरकर रस लेकर राजा को आधा पात्र वाला रस ग्रहण करने के लिए कहा और खुद ने पूरा पात्र वाला रस अपने गले में नीचे उतार दिया, अर्थात निगल गया। इस तरह से प्रतिदिन वही क्रिया करने लगे। इसी प्रकार से एक महीने से ज्यादा दवा का सेवन कर राजा स्वयं को संपूर्ण स्वस्थ महसूस करने लगे और पहले की अपेक्षा अपने को और अधिक स्वस्थ तथा सबल समझने लगे। वो दवाई ले रहे थे जैसे जैसे बताया गया हमको। इसके बाद राजा निश्चिंत हो गए कि वह संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। होता है ऐसे हमारे साथ भी क्या, बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। इसके बाद राजा निश्चिंत हो गए कि वह संपूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। दवा का प्रयोग लेकिन तब भी बंद नहीं हुआ। ऐसी हालत में कुछ दिन और बीतते ही राजा का काम भाव धीरे धीरे जगने लगा। किसी प्रकार की विचार बुद्धि के द्वारा भी राजा अपने मन को संयम में रखने में असमर्थ हो गए। अंततः राजा ने सन्यासी के पास जाकर अपने काम भाव को व्यक्त किया। महात्मा जी, इतने दिन तो मैं बिल्कुल संयत ही था, लेकिन कई दिनों से मेरा मन में प्रचंड काम उद्वेग हो रहा है। मैं तो अब पूरी तरह से स्वस्थ ही हूं, एक और विषय जानने के लिए विशेष उत्सुकता हो रही है। क्या आप मुझे आधा ग्लास दवा दे रहे हैं और खुद पूरा ग्लास दवा का सेवन कर रहे हैं, तथापि आपको तो किसी प्रकार के इंद्रिय चांचल्य हो रहा हो ऐसा लगता ही नहीं।
इसका क्या कारण है? सन्यासी ने कहा, महाराज आने वाले कल के दिन आपको बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह सन्यासी ने महाराज से कहा, महाराज मुझे पता चला है कि आपके अंदर काम भाव जागने के कारण दवा की सारी क्रिया नष्ट हो गई है। सन्यासी ने कहा, महाराज केवल वही नहीं, आप केवल एक महीने और बचेंगे, एक महीने के बाद आपकी मृत्यु अवश्य ही होगी, क्योंकि आपने क्या किया है, दवा ठीक से नहीं ली। लेकिन जिससे आपको कोई शारीरिक तकलीफ ना उठानी पड़े और सुख के साथ प्राण त्याग कर सके, उसके लिए मैं आपको दवा दूंगा। इस एक महीने आप अपनी इच्छा के अनुसार भोग कर सकते हैं। इस बात को सुनकर राजा ने मानो तभी प्राण त्याग दिए हो ऐसी हालत हो गई कि एक महीना रह गया बस उनकी मृत्यु का। राजा को और कुछ भी अच्छा नहीं लगा, खाने पीने में भी थोड़ी सी रुचि नहीं रही, स्त्री सहवास की बात तो सपने में भी नहीं सोची। इधर सन्यासी प्रतिदिन उक्त दवा पूरा एक गिलास भरकर राजा को देने लगा। राजा भी दवा खाने लगे। राजा मानो पूरा ही बदल गए हों, कहीं भी नहीं निकलते, बात भी नहीं करते, उनको हर एक वक्त मौत की फिक्र लगी रहती। उसके साथ ही जीवन में कितने बुरे कर्म किए हैं, मरने पर क्या गति होगी, यमदूत आएंगे, कितनी तरह की यात्राएं लेंगे, उसके बाद किस तरह नर्क में ले जाएंगे, इस प्रकार की सोचों ने मन को घेर लिया। तरह एक एक दिन बीतने लगे और राजा मृत्यु का दिन गिनने लगा। कर संसार और अच्छा नहीं लगता, वह सभी प्रकार के संग से शून्य होकर भगवान के मंदिर में जाकर रहने लगे। शिव विग्रह तरफ देखकर विगलित अश्रुधारा के वक्ष स्थल भिगोने लगे। इसी तरह जो ही एक महीना पूरा होने को था, उसी दिन सन्यासी राजा से निकट जाकर कहने लगे, महाराज कैसे हैं? महाराज ने अत्यंत करुणा भाव से कहा, महात्मा जी केवल मात्र शरीर है, प्राणी है नहीं कहना उचित है। सन्यासी ने पुनः राजा से पूछा, महाराज इन चंद दिनों में आपने किसी प्रकार के काम भाव को महसूस किया? महाराज ने कहा, आप भी क्या कहते हैं महात्मा जी, दो दिन बाद जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसके अंदर में किस प्रकार काम भाव आ सकता है? सन्यासी ने तब मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ तथा दीर्घायु हो गए हैं, अब आपकी मौत नहीं होगी। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया था कि इतनी दवाओं का सेवन करने पर भी मेरी किस प्रकार की इंद्रिय चंचलता नहीं दिखाई पड़ती, इसका कारण है महाराज मैं सर्वदा देखता हूं कि किसी भी पल मेरी मौत हो सकती है। मृत्यु जीवन का अवश्यमयी भावी परिणाम है। इस बोध के मेरे अंदर दृढ़ होने के कारण सांसारिक वस्तुएं मुझे आकर्षित नहीं करती, और आपने स्वस्थ होकर ही सोचा कि आपको अब मौत का और डर नहीं है, इसी कारण से आपके अंदर भोग वासना का उदय हो गया। जैसे आप स्वस्थ होने लगे, आपने सोचा कि बस अब तो ठीक हो गया सब कुछ, तो फिर से काम भावना जागृत हो गई। महाराज संसार अनित्य है और शरीर भी अनित्य है, तथा इस मिथ्या तथा अनित्य वस्तुओं के मोह से ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म की अवहेलना के साथ जो नष्ट करता है वह आत्मघाती है। महाराज मनुष्य का प्रत्येक पल प्रत्येक श्वास की कितनी कीमत है ये कहकर समझाने वाली बात नहीं है। मैं 100 वर्ष जीऊंगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ध्यान रखना चाहिए कि किसी पल मृत्यु हो सकती है। ऐसे दुर्लभ मानव जनों को प्राप्त कर जागतिक सुख की आशा में समय बिताने जैसी मूर्खता और दूसरी नहीं है। इतनी देर में राजा को होश आया, वह सारा राज्य सुख ऐश्वर्य का परित्याग कर रात के अंधेरे में भगवत पाद पद प्राप्त करने के उद्देश्य से सन्यासी के साथ निकल पड़े। अब समझ कर देखो कि सत्य ही जगत अनित्य है, तो शरीर भी अनित्य है। यह ज्ञान ठीक प्रकार से होने पर किसी प्रकार साधक का मन संसारिक वस्तुओं में आसक्त होगा। जिसका मन कृष्ण भावना में नहीं हुआ है तथा जागतिक वस्तुओं में प्रबल आसक्ति रह गई है, उसको विवेक के द्वारा ईश्वर के अलावा दूसरी वस्तुओं का अभिनिवेश छोड़ने का प्रयत्न करना होगा। विचार करने पर देखा जा सकता है कि वास्तव में क्या जागतिक वस्तु मुझको आनंद प्रदान कर रहे हैं? वास्तव में वैसा नहीं है। जागतिक जड़ है और आनंद है चेतना का धर्म, तो फिर किस प्रकार जड़ चेतन को आनंद दे रहा है? यही है भ्रम। जागतिक जड़ वस्तु कभी चेतन को आनंद नहीं दे सकता। जीव जड़ीय वस्तु पाकर सोचता है मैंने आनंद पा लिया। आनंद एवं निरानंद मन की एक अवस्था विशेष है। अमर जड़ चेतना को आनंद देता हुआ तो बहुत समय हम स्वप्न देखकर भी आनंद प्राप्त करते हैं, तो फिर सपने में किस वस्तु ने मुझको आनंद दिया। एक उदाहरण के द्वारा विषय को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसो मैं मानो तुमने लॉटरी की एक टिकट खरीदी है, जब लॉटरी का परिणाम निकला तो तुमने अपने टिकट का नंबर मिलाकर देखा कि तुम्हारा पहला इनाम निकला है, तुम खुशी में के मारे अपने को ही भूल गए। उसके कुछ क्षण बाद तुमने क्या सोचकर दोबारा टिकट का नंबर मिलाने जाकर देखा कि नंबर तो ठीक है लेकिन सीरीज में गलती हो गई है, अर्थात पहले इनाम ए सीरीज में निकला है और तुम्हारा टिकट बी सीरीज का है। तब तुम गम में एकदम डूब गए। अब विचार करके देखो, पहले तुमको रुपया नहीं मिला लेकिन आनंद प्राप्त हुआ, बाद में तुम्हारा रुपया नहीं खोया लेकिन दुखी हुए, यही माया है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी इस आनंद नामक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्राण लुटा रहे हैं। किसके आनंद का अनुसंधान? वह है जीव के अपने स्वरूप का आनंद। आनंद ही जीव का स्वरूप है, उसी आनंदमय सत्ता जीव को भूमानंदमय ईश्वर सर्वदा आकर्षण कर रहा है। जितने दिन तक जीव अपने स्वरूप में स्थित होकर पूर्णानंदमय श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त कर लेता, उतने दिन उसके इस आनंदानुसंधान का विराम नहीं होगा। अविद्या माया से घिरा हुआ जीव अपने स्वरूप को खोकर इस पंच भौतिक देह में मैं को समझकर जड़ी वस्तु में उस आनंद का अनुसंधान करके जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार अवतरित हो रहा है। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अते माया तारे ते संसार दुख। तो इस तरह से यहां पर वर्णन किया गया है। बहुत तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब जितने भी भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हम लोग कृष्ण का स्मरण कर सकें और अधिक से अधिक हम लोग कृष्ण भावना भावित हों। और इन भक्ति के अंगों का पालन हम बड़ी गंभीरता से करें, जिस तरह से उस राजा को सन्यासी ने एहसास दिलाया कि हमें एहसास करना है कभी भी हम लोग शरीर छोड़ सकते हैं और इसलिए हमें जिस चीज का भी परित्याग करना हो करना चाहिए अपने परिस्थिति के अनुसार, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए और उसी से हमारी भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि यही भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने दिखाया उदाहरण देते हुए कि बारात जा रही थी, नाव में बराती बैठ गए और रात भर वो केवट चलाता रहा नाव, जब सुबह का वक्त आया तो नाव वहीं पे खड़ी रही। क्यों? उसे तो लंगर निकाला ही नहीं। तो जब तक भौतिक आसक्ति का लंगर नहीं निकालेंगे हम लोग तो ये भक्ति के अंगों का पालन भी करेंगे तो वो केवल भारी रूप से होगा, लेकिन चिंतन हमारा क्या होगा? वो तो विषयों के ऊपर ही होगा। इसलिए क्या है, फिर भजन ठीक से नहीं हो पाता है, इसे लगता भी नहीं है कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग इन भक्ति के अंगों का पालन बड़ी सावधानी से करें। और तो बहुत कुछ है कहने के लिए लेकिन इतना पर्याप्त है, इतना कहकर यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय। और कुछ अगर बचा हो तो अगली बात है। श्रील प्रभुपाद की जय। समय हो गया है तो प्रश्न ही ले रहे हैं।